ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
शिशिर जी। भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी और अभी तीसरी द्विमासिक समिति की इस बैठक में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को 7.2% पर यथावत रखा है। तो अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है भारत की, उसे देखते हुए इसके क्या मायने हैं?
देखिए, जब रिजर्व बैंक का अनुमान आता है, आमतौर पर इस अनुमान को सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि इनके पास जो आंकड़े होते हैं अलग अलग एजेंसियों के मुकाबले, वो काफी सटीक होते हैं और इनका आकलन हमेशा से ये देखा गया है कि वास्तविकता के काफी करीब होता है। आपने देखा होगा कि अभी जब बजट पेश किया गया था, उसमें उसके पहले जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था, तो उसमें 6.5 से 7% की विकास दर की बात कही गई थी। तमाम एजेंसियां जो है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, फिच हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन सब ने अपने अनुमान में संशोधन किया और ऊपर कर दिया है। किसी ने 7 कहा, किसी ने 7.2 कहा। तो जब रिजर्व बैंक का अनुमान आता है, तो वो एक ये माना जाता है कि सबसे सटीक अनुमान है। इसके मायने क्या है? दो मायने हैं। पहली चीज तो ये है कि अर्थव्यवस्था में उद्योग की स्थिति काफी बेहतर है, सेवा क्षेत्र एक सामान्य दर पर चल रहा है, कृषि की स्थिति को लेकर के जरूर चिंता है, और जो आर्थिक समीक्षा में भी बात कही गई थी, बजट के समय में भी कहा गया, और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी इस बात को मानते हैं। खासतौर पर अगर आप उनके जो बयान के अलग अलग हिस्से हैं उनको देखें, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि हमारा देश विकास तो कर रहा है, विकास की रफ्तार ठीक ठाक बनी हुई है, और जो जोखिम है वो बराबरी का है, यानी कि दोनों तरफ है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, 50-50 की बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उद्योग की स्थिति अच्छी है, क्योंकि उसके लिए जो इनिशियल पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी देखते हैं, वो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, या फिर आपका जीएसटी का कलेक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो सभी बेहतर हैं। लेकिन हाँ, जहां थोड़ी बहुत जो चिंता है वो कृषि को लेकर के है, और उसके लिए बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मॉनसून जब सामान्य से बेहतर चल रहा है, ये रफ्तार बनी रहेगी, तो कृषि भी बेहतर होगा और आपके विकास की दर थोड़ी और अच्छी देखने को मिल सकती है।
शिशिर जी, अगर आज हम आरबीआई गवर्नर की स्पीच को देखें, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मुद्रास्फीति मोटे तौर पर गिरावट की राह पर है और तीसरी तिमाही में आधार प्रभाव का पर्याप्त लाभ समग्र मुद्रास्फीति को नीचे खींच सकता है। अगर सामान्य भाषा में हम कहें, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि देश में सामान्य खाद्य पदार्थ जो हैं, उनकी कीमतों को लेकर के चिंताएं जाहिर की गई हैं। खासतौर पर सब्जियों और दूध की बात अगर हम करते हैं, तो ये चीजें हमारे सामने हैं, और मोटे तौर पर अगर देखें तो आम जनता भी इन्हीं बातों को समझना चाहती है।
देखिए, महंगाई की दर निश्चित तौर पर अगर आप देखें, जून के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई दर हमारी 5.1% है। ये 5.1% का मतलब क्या हुआ? हम लोग दुनिया के उन गिने चुने देशों में जहां पर हम लक्ष्य के भीतर महंगाई दर को रखने की कोशिश करते हैं। वो लक्ष्य की दर क्या है? 2 से लेकर 6% के बीच में, और जो मध्य दर है वो 4% है। हमारा अभी महंगाई दर का है 5.1%। महंगाई दर को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि तमाम चीजें, जितनी भी बास्केट में चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, ईंधन की बात हो, सेवा क्षेत्र की बात हो, वो सभी चीजें शामिल हैं। और जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो उसमें से हम फूड और फ्यूल यानी कि खाद्य और ईंधन हम उसको हटा देते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। तो इस महंगाई दर की सबसे खास बात यह है कि हमारी जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसको आप कह सकते हैं कि आधार जो है, वो 3.1% के करीब है, जो हमारे लिए एक संतोषजनक स्थिति है। हमारी चिंता कहाँ है? हमारी चिंता है खाने पीने की चीजों की महंगाई बिल्कुल लेकर के। और आप अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर के ही स्टेटमेंट को देखेंगे, और उसमें अगर मैं कुछ आपके सामने आंकड़े उनकी ही बयान से मैं करूं,
जरूर,
तो एक है कि खाने का जो पूरा हेडलाइन इन्फ्लेशन में था, यानी कि जो सुर्खियों वाली महंगाई दर थी, उसमें अप्रैल में खाने पीने की चीजों का योगदान 74.7% था, जो कि मई में 75.2 और जून में 76.3% पर पहुंच गया, यानी कि उसकी स्थिति और आगे बढ़ी है। केवल फूड की अगर हम लोग बात करें, यानी कि केवल खाने पीने की जो खास चीजें हैं, उनका 44.8% है। इसमें सबसे ज्यादा हमारी परेशानी का है साग सब्जियां हैं,
बिल्कुल,
और साग सब्जियों में भी जो महंगाई का फॉर्मूला अपनाया जाता है, उसको कहते हैं टॉप, टोमेटो ओनियन पोटैटो, यानी कि टमाटर आलू प्याज। और टमाटर आलू और प्याज की स्थिति अगर आप सरकारी आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जुलाई के महीने में टमाटर 62% महंगा हुआ है, आलू 18% महंगा हुआ है और प्याज जो है वो 22.6% महंगा हुआ है। और यही वजह है कि जो आधार जिसका आपने जिक्र किया था उसका जो फायदा मिल रहा था उसमें कुछ हद तक जिसे कहें कटौती होगी वो इन वजहों से होगी।
और गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा है कि ग्लोबल स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है, हम आसपास के माहौल को देखें तो तरह तरह की अराजकता हम कह सकते हैं हमारे आसपास है, लेकिन भारत की स्थिति काफी हमें मजबूत नजर आती। और आरबीआई ने यह भी माना है कि कुछ देशों के सेंट्रल बैंक ब्याज की दरों में कटौती पर विचार कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत का रुख कैसा रहेगा आने वाले समय में?
आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं, एक जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण है और आपने जैसा जिक्र किया कि पड़ोस ने जिस तरीके का माहौल है उससे दक्षिण एशिया पर असर पड़ता है, इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था वो अंतहीन होता जा रहा है, कब खत्म होगा हमें पता नहीं है, बाकी जगहों पर भी तनाव है, तो हमारे लिए वैश्विक परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण हो चुकी हैं। और वैश्विक परिस्थितियों के चुनौतीपूर्ण होने से हम क्यों इतने चिंतित हो जाएं? क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हम एक वैश्विक गांव में रहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी लिव इन अ ग्लोबल विलेज। तो जब आप गांव में रहते हैं ना तो आपको पता हुआ है कि गांव में अगर एक घर में कुछ होता है ना तो बाकी घर भी प्रभावित होते हैं, तो इसका असर हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। अब जो आपका दूसरा प्रश्न का जो हिस्सा है, देखिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस बात का जो वहां का केंद्रीय बैंक है वो इशारा कर रहा है कि वो आने वाले समय में ब्याज दर में कटौती कर सकता है, और अगर वो कटौती करता है तो इसका असर हमारे ऊपर भी देखने को मिलेगा, हमारे ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। आप देखिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, ये नौवां मौका है जब उसने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया, और अमेरिका में भी महंगाई दर बढ़ी हुई लेकिन संकेत ये आ रहे हैं कि वो महंगाई दर की बढ़ोतरी के बावजूद ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं क्योंकि वहां की जरूरत है। बैंक ऑफ जापान ने ऐसा कदम उठा लिया है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे यहाँ भी इस बात की संभावना बन रही है। लेकिन आपने अगर शक्तिकांत दास साहब के बयान को सुना होगा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे लिए घरेलू परिस्थितियां महत्वपूर्ण है, वैश्विक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन हमें कोई भी फैसला लेना है उसमें अगर हम ज्यादा किसी चीज को तवज्जो देंगे वो घरेलू परिस्थितियां।
रेपो रेट की आपने बात कही है तो रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है। बहुत से लोग लोन लेकर के काफी चीजें करते हैं, कहीं ना कहीं इस उम्मीद में हमेशा रहते हैं कि शायद किसी मोर्चे पर कुछ और राहत मिल जाए।
आपके श्रोता ये सुनकर के शायद थोड़ा बुरा भी मान जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन में बैंकों के पास जमा की कमी हो गई है, और जमा की कमी हो गई है तो वो नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो ला ही रहे हैं, इसके अलावा वो जमा पर ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, और जब जमा पर ब्याज दरें बढ़ती हैं ना तो कर्ज भी महंगा होगा एक समय के बाद, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भले ही रेपो रेट या जिसको हम लोग नीतिगत ब्याज दर कहते हैं, यानी कि वो दर जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसमें भले ही कोई बढ़ोतरी ना हो, लेकिन जब बैंक को जमा और उनके बीच में जब इस तरह का अंतर देखने को मिलेगा तो बैंकों के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, वो कर्ज को भी महंगा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये तुरंत नहीं होने वाला है, इसके लिए कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जमा आप जो महंगा लेते हैं उस महंगी राशि को कर्ज के तौर पर तुरंत नहीं देते हैं, आप उसमें कुछ समय लगता है।
शिशिर जी, गवर्नर साहब ने ये कहा है कि आरबीआई तरलता प्रबंधन कार्यों में चुस्त और लचीला बना रहेगा, साथ ही उन्होंने अन्य जो देश के बैंक हैं उनको सतर्क रहने की चेतावनी दे दी है कि भैया जमा में गिरावट हो सकती है तो बैंकों को संरचनात्मक तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसका आपने भी जिक्र किया। लेकिन एक सामान्य तौर पर हम देखें तो हमारा बाजार जो है बैंकिंग से काफी जुड़ा हुआ है, तमाम चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बाजार पे आपको कोई असर नजर आता है इसका?
शेयर बाजार और ब्याज दरों के बीच में हमेशा उल्टे का रिश्ता रहता है, ब्याज दरें अगर बढ़ती हैं तो उसका नकारात्मक असर होता है, ब्याज दरें घटती है तो उसका बाजार पे सकारात्मक असर पड़ता है, ये सामान्य सी व्यवस्था है। तो अभी आपने अगर आज देखा होगा तो शेयर बाजार आज गिरा था, जब पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ उसका बाजार गिरा था, क्योंकि बाजार को उम्मीद थी कि शायद फेडरल रिजर्व से संकेत आ रहा है तो यहां से भी कुछ न कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, बहुत स्पष्ट संकेत नहीं दिए, लेकिन हाँ परिस्थितियों के हिसाब से वो कुछ कदम उठाएंगे, ये बात की जरूर जो है एक तरीके से संकेत मिले हैं कि आने वाले समय में जैसी परिस्थितियां रहेंगी उस हिसाब से हम कदम उठाएंगे।
शिशिर जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आरबीआई हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर के चलता है, तो आरबीआई के आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि लक्ष्य को 7.3% से संशोधित किया गया है और 7.1% किया गया। वहीं दूसरी तिमाही को 7.2% पर बनाए रखा गया, जबकि तीसरी तिमाही के लिए ये 7.3% किया गया और चौथी तिमाही के लिए ये 7.2% बना हुआ है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमें ये सकारात्मक ही नजर आ रहा है। आपके क्या विचार होंगे इस पर?
पहली तिमाही में देखिए, पूरे साल में तो उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया जो 7.2 का है। पहली तिमाही के आंकड़े जो कि इस महीने के अंत में आएंगे, अगस्त की आखिरी जो वर्किंग डे होगा उस दिन हमें पता चलेगा कि अप्रैल से जून की तिमाही में हमारी विकास दर क्या रही। देखिए, अप्रैल से जून के समय में खर्चे हमारे कम हुए, मैं उन खर्चों की बात कर रहा हूं जो सरकारी खर्च है, तो उसका असर उत्पादन और उसका असर उपभोग पर देखने को मिला। दूसरा यह है कि महंगाई का भी कुछ हद तक असर देखने को हमें मिला है। और तीसरी बात अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो दो क्लियर इंडिकेटर जिसको हम लोग पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई सर्विसेज देखते हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि या तो वो बने हुए हैं या थोड़ा हल्का उनमें गिरावट आया है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पहली तिमाही की विकास दर में हमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है और रिजर्व बैंक ने इसी को ध्यान में रखते हुए 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 7.3% उन्होंने पहले कहा था, अब वो 7.1% कह रहे हैं। तो क्या ये 7.1% को लेकर के चिंता करें? हम ये बार बार कहेंगे कि 7.1% की विकास दर कोई छोटी मोटी विकास दर नहीं, और खासतौर पर बीते सालों में देखे जहां पर विकास दर ऊंची रही उसके ऊपर अगर आप 7% की दर से विकास करते हैं तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, दूसरी और खास तौर पे तीसरी तिमाही में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। जो त्योहारों का मौसम होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कमी पहली तिमाही में होगी, थोड़ी बहुत जो कमी होने की आशंका कह सकते हैं आप, वो तीसरी तिमाही तक आते आते रिकवर हो जाएगा और हमें पूरे साल पर उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा।
शिशिर जी, अगर आरबीआई गवर्नर की स्पीच के अन्य मुद्दों की हम बात करें तो उन्होंने डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स से संबंधित समस्याओं के लिए एक सार्वजनिक भंडार बनाने की बात कही है, ये किस तरह की पहल है? उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है और चेक के समाशोधन चक्र को वर्तमान 2 कार्य दिवस से कम करने का प्रस्ताव दिया गया। तो ये बैंकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरह की पहल या गतिविधियां हैं?
देखिए, सबसे पहले अगर मैं चेक की बात करूं, अगर उसे 2 वर्किंग डे से कुछ घंटों में उसको क्लियर कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता और जिसको कहा जाए कि पैसा फंसे होने की जो शिकायत होती थी वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। यूपीआई निश्चित तौर पर देखिए, आप आज के दिन में हर तरह के भुगतान के लिए आप अगर जेब में वॉलेट लेके नहीं भी चलते हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अब उसमें अगर कर भुगतान को हमारे लिए आसान किया जाए, आपने कहा कि आप यूपीआई से आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक का कर भुगतान कर सकते हैं, अगर 5 लाख रुपए करने की बात की, ये बहुत अच्छी पहल है। और तीसरा, जो आपने रिपोजिटरी की बात की, ये आज के समय की जरूरत है। देखिए, रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास एक ऐसा भंडार है जिसमें कई तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं और उन जानकारियों के आधार पर आप नीतियों में त्वरित फैसला ले सकते हैं।
बिल्कुल,
ये भंडारण उस दिशा में मदद करेगा। तो मेरे ख्याल से ये तीनों काफी अच्छे पहल है। बैंकिंग व्यवस्था को जो फायदा होगा सो होगा, हम आप जो एक आम उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, उनके लिए भी एक ये अच्छी खबर होगी।
शिशिर जी, अभी आपने ये बताया था कि बैंकों से नवीन उत्पादों और सेवा पेशकशों को बढ़ाने की बात कही है आरबीआई ने और विशाल शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने के साथ साथ वित्तीय बचत जुटाने पर भी अधिक ध्यान देने को कहा गया है। मेरा सवाल आपसे कि एक ऐसा समय जहां पर लोग अब मार्केट की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं तो बैंकों के लिए धन जुटाना आसान होगा या आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है?
मैं यही कहूंगा कि काफी चुनौतीपूर्ण है, खासतौर पे जब आप कहते हैं कि आप शेयर बाजार में जाते हैं और इतना कमा लेते हैं। देखिए, अब शेयर बाजार लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल तुरंत में कमाई करने का मौका है और शेयर बाजार हर किसी को पैसा नहीं देता, ये भी एक सच्चाई है। तो अब यहाँ पर यही चीज की ओर इशारा किया जा रहा है कि बैंक कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट लेकर के आए कि भले ही आप महंगा या शेयर बाजार के रिटर्न के बराबर की बात ना करें जो एक बार बार बात कही जाती है, लेकिन लोगों को ये भरोसा दिलाइए कि आपका जितना सुरक्षित है, जितना आपको मूल और ब्याज की गारंटी, और अगर बैंक किसी तरीके से बंद हो जाए तो बीमा की भी सुविधा है, ये सारी चीजें बताएं और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर के आए, तो जितना ज्यादा नवाचार होंगे युवा पीढ़ी उतनी आकर्षित होगी।
शिशिर जी, काफी अच्छी बातचीत हुई आपसे इस मुद्दे पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।